نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اپنی شخصیت کو نکھارنے کے سلسلے میں آج ہم اگلا ٹاپک جو دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر اچھی خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں, ہمیں کریٹیو بنا سکتے ہیں. اردو میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو کیا ہے کہ تخلیقی عناصر. تخلیقی عناصر کیا ہیں؟ کریٹیوٹی پیدا کرنے والے ایلیمنٹس. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے خوبیاں چھپا کے رکھی ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان خوبیوں سے آگاہ ہوئے بغیر ہی دنیا سے آگے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے اندر کون سی ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو ہم سب کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس شاہکار اور اس نمونے سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے, اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں ان چیزوں سے مزید فائدہ اٹھانا آسان لگے گا. تو پہلی چیز جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کا ایک ٹھوس نظریہ حیات ہو. انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پرپز آف لائف, یعنی سب سے پہلی چیز جو کسی انسان کو ایک بامقصد انسان بناتی ہے یا اس کو کچھ کر لینے کے قابل کرتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد پتہ ہو. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ اس لیے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی یہ مقصد حیات بتا دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ دو باتیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے, تمہارے جینے کا مرنے کا کوئی مقصد نہیں, اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ وہ ایک شعور کے ساتھ جیے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مقصد کے ساتھ گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے جانا کہیں اور بے مقصد ڈرائیونگ کرنا, کتنا فرق ہوتا ہے. جس کے پاس مقصد ہوتا ہے وہ ایک ایک منٹ اپنی نظر رکھتا ہے, وہ شارٹ کٹ لیتا ہے, وہ بیکار قسم کی چیزوں میں الجھتا نہیں, کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے, اس کو ایک جگہ پہنچنا ہے. اس کے برعکس جو صرف ایسے ہی فن کے لیے نکلتے ہیں, آپ کو کوئی کہے گا چلیں ادھر چلتے ہیں تو آپ ادھر چلنا شروع ہو جائیں گے, تھوڑی دیر بعد دوسرا کوئی کہے گا ادھر چلتے ہیں تو آپ ادھر چلنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ آف دا ڈے بعض دفعہ آپ اسی جگہ کے ارد گرد گھومتے ہوتے ہیں, وہاں آگے منزل پہ نہیں جاتے. بالکل جس انسان کی زندگی میں مقصد اہم ہو جاتا ہے پھر اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ اس کی زندگی میں آتا ہے, اور وہ کہہ کہ وہ اصول پرست ہو جاتا ہے. اس کے پاس ایک واقعی سوچ ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں کے لیے ایک نرم چارہ نہیں بنتا کہ لوگ اس کو مس یوز کریں. اس کا ٹائم لوگوں کے لیے نہیں لگتا بلکہ لوگ اس کے ٹائم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ اپنے دماغ کو حاضر رکھتا ہے. پھر ایسا بندہ جو ہے وہ حق اور باطل کے ساتھ ایک ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھتا. اس کو بالکل اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے اس مختصر سے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے, اور کوئی باطل, کوئی لغو, کوئی بیکار مشغلہ اس کی زندگی کے چند منٹ بھی نہیں لیتا. عموماً دیکھیے کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ گھنٹوں کے اعتبار سے بیکار چیزوں کو دیکھنے میں صرف کر دیتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, فانی تو ہے. ایک شادی میں جائیں گے تو تین تین گھنٹے وہاں بیٹھیں گے, کیا ہوا, خوشیاں تو ہوئیں؟ نہیں, بہت اہم چیز ہے. جتنا آپ اس کو موٹا کر کے لکھ سکے لکھیں, جتنا ہائی لائٹ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو, اور وہی مقصد انشاءاللہ پھر آپ کو باصول بھی بنائے گا. آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے, لوگوں کی باتوں کو سننے کی بجائے آپ اپنی باتیں سنیں گے, اور اس طرح وقت کا بہترین استعمال ہوگا. دوسری چیز جو انسان کو اپنی زندگی میں کریٹیوٹی لانے میں فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان با اصول ہو, اور جو اصول بنا لے اس پر عمل کرے. बस दफ़ा रूल्स बनाए तो जाते हैं लेकिन अप्लाई नहीं होते। ऐसे रूल्स फिर थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे, कोई उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा। पीछे हमने देखा कि आपको अपना ज़िंदगी का मकसद पता हो, आप जो ज़िंदगी गुजार रही हैं उसका एक गोल है, फिर अब आप कुछ असूल मुकर्रर करेंगे जिसकी वजह से फिर आप अपनी ज़ात, अपनी गुफ्तगू और अपने आप को हर लम्हे चेक करेंगे कि क्या मैं ठीक डायरेक्शन पे जा रही हूँ। फिर आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी आएगी और आप फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अब झूठ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। फिर आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी कि जहाँ गुंजाइश हुई झूठ बोल दिया, जहाँ हक तलफी करनी चाहिए तो कर ली, कामों को मौखर कर दिया, चलें कहीं थोड़ा सा कोई अंडर द टेबल कोई काम करवा लिया। नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। जिस बंदे की ज़िंदगी में असूल आते हैं ना, वो वक्ती फ़ायदों से उठ के दूर रस फ़ायदों पे नज़र रखता है। ये जुमला लिख लें, जब तक आप किसी चीज़ को फॉर एवर बींग के लिए बड़ा नहीं बनाएंगे, फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक छोटे छोटे फ़ायदे भी अब फ़ायदा मंद नहीं होगी। वरना देखिए कि जो लोग बेअसूल ज़िंदगी गुजारते हैं ना, बाज़ दफ़ा दुनिया में चंद हज़ार गज़ के प्लॉट के लिए वो धोखे भी कर लेंगे, वो अपने असूलों को तोड़ भी लेंगे, लेकिन कल जब उनको 2x6 फिट के ज़ेर ज़मीन फ्लैट में जाना पड़ेगा ना, उस वक्त फिर नदामत होगी कि उस घर में ना तो कोई लाइट है और ना वहाँ कोई कारपेट है और उस बंदे की जेब में कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो क्या है कि हमें अपने असूलों को मुतय्यन करना है। तीसरी चीज़ जो इंशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर देगी, आपको बामकसद इंसान बनाएगी और आप अपने आप से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हासिल करेंगे, वो क्या है? इखलास नीयत और इखलास अमल। नीयत भी खालिस रखनी है और अमल भी खालिस रखने हैं। ये दोनों अलग से क्यों बोला? इसलिए कि बाज़ दफ़ा जब कोई काम शुरू किया जाता है तो नीयत बड़ी खालिस रहती है, लेकिन काम करते करते जब अमल से हम गुज़रते हैं तो फिर नीयत जो है वो हलाक हो जाती है, नीयतें ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए इंसान को अगर खुश किस्मती चाहिए तो उसको इल्म लेना पड़ेगा। इल्म और इबादत दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन दुनिया में इल्म और इबादत दोनों को हलाक करने वाली चीज़ इंसान की नीयत की ख़राबी है। लिहाजा अगर इल्म और इबादत के साथ अच्छी नीयत शामिल हो जाए तो इंशाल्लाह सारी दुनिया हलाक हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग बच जाएंगे। अल्लामा इब्ने जोज़ी हैं, मिनहाजुल कासिदीन, उनकी बड़ी ख़ूबसूरत किताब है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। कहते हैं कि अरबाब बसीरत को अनवारुल कुरान से ये बात मालूम हुई कि सादत तक पहुँचने के लिए इल्म और इबादत नहायत ज़रूरी है। दुनिया में सब लोग हलाक हो रहे हैं मगर इल्म वाले, और सब इल्म वाले हलाक होंगे सिवाय आमेलीन के, यानी जो इल्म लेते हैं उस पर अमल करने वाले, और सब अमल वाले हलाक होंगे सिवाय मुखलसीन के, और मुखलस भी अजीम ख़तरे में है क्योंकि शैतान पीछे लगा हुआ है, वो कभी भी उनको बचाएगा नहीं। तो हमने तीसरी चीज़ क्या सीखी कि अपनी नीयतों को खालिस करना है, मुखलिस बनना है, खालिस चुने हुए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। इखलास नीयत के अपने अजर हैं, जितनी नीयत बड़ी होगी उतना अजर बड़ा होगा। बाज़ औक़ात इंसान को अमल की फ़ुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ताला उसको उसकी नीयत का अजर देगा, और नीयत का इख्तसाब करते करते इंसान फिर अमल तक भी पहुँचता है। तो ये तीसरी खूबी थी जो हमें फ़ायदा देगी। कौन सी हैं दोबारा दोहरा लेते हैं, पर्पज़ ऑफ लाइफ का पता होना, बामकसद ज़िंदगी गुजारने का ख्याल होना, दूसरी चीज़ असूलों का इल्म हो और इन पर अमल की बात हो, यानी बाअसूल बनना है, बेअसूल नहीं बनना, छोटी छोटी बातों पे अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना, और तीसरी चीज़ है इखलास नीयत और इखलास अमल, यानी हमें अपने आप को बिल्कुल प्योरीफाई करना है। चौथी चीज़ एहसास ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस होना। इस दुनिया में देखें तो हर इंसान ज़िम्मेदार है और हर फर्द किसी न किसी अंदाज़ में कहीं ना कहीं बड़ा बना हुआ है, राई है। आप घर में हैं तो अपने घर वालों के ऊपर आपकी आपकी एक जिम्मेदारी है, ख़ानदान में हैं तो दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, मामलात में हैं, अगर कोई हाकिम है तो अपनी राया के बारे में। इंसान को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। ज़रा पूछिए अपने आप से, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है? और इसके लिए शऊर की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए कि जब तक शऊर नहीं आता ना, तो बाज़ दफ़ा लोग बच्चे के पैदा होने को एक फ़न समझते हैं। बच्चा पैदा हो गया, मुबारकबादें। माएँ सोचती हैं कि अब कपड़े जमा करना और बाज़ारों के चक्कर लगाना ही मकसद है। बच्चा पैदा भी हो चुका है, अब माँ सोचती है कि इसको खिलाना पिलाना, इसको मैचिंग कपड़े पहनाना, इसके बहुत फैंसी झूले लेना, ये इस बच्चे के आने का मकसद है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ सोचती है कि इसको हर मनपसंद चीज़ खिला देना, यही इसकी ज़िंदगी का मकसद है। और वो बड़ा मकसद जहन में आता ही नहीं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बच्चा दिया। गोया कि आपने एक अच्छी माँ होने का हक़ अदा नहीं किया, एहसास ज़िम्मेदारी नहीं आपको। घर मिलता है, अल्लाह की नेमत है। हम घर को क्या सोचते हैं, ये कंफर्ट है, ऐश मस्ती, नहीं, आप उसकी जवाबदेह हैं। हर बड़ी ज़िम्मेदारी, हर बड़ी नेमत इंसान के लिए ज़िम्मेदारियों को लेके आती है। चलें हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। पहले मैं अपनी ज़ात से बात करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाऊँगी, मुझे वो पता होना चाहिए, मुझे अपने असूलों का पता होना चाहिए, मेरी नीयत में इखलास और अमल में इखलास होना चाहिए, और फिर उसके बाद मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने ये ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं लोगों को पढ़ाऊँगी। अब अगर मैं इसकी बजाय इस कमरे की सफाई शुरू कर दूँ, मैं यहाँ आने वालों को एंटरटेन करना शुरू कर दूँ और पढ़ाने का वक्त निकाल दूँ, तो क्या मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है? नहीं एहसास। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हैं आप, जो सुन रहे हैं या जो सीख रहे हैं, आप तालिबिल्म हैं। आप इन चारों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे लाइए। देखिए एक पूरा बड़ी ज़िंदगी का मकसद होता है, एक छोटे काम का मकसद है। आप क्लास में बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घंटों के एतबार से आपको यकीनन पता होना चाहिए कि मैं क्यों बैठी। अगर मैं घर से निकली तो मैं क्यों निकली, अगर मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो क्यों किया, मैंने सारे घर वालों में अनाउंस किया कि देखो ये मेरी क्लास का वक्त है तो मैंने क्यों किया। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बड़ी तैयारियां करके बैठते हैं और जो ही बैठते हैं तो हम बस जहन को कहीं और भेज देते हैं, ईमेल चेक करने लगते हैं, साथ मैसेजिंग करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं। दैट मीन के फिर आपने ये सारे काम कर छोड़ दिए, ना मकसद मकसद का पता था लेकिन फ़ायदा नहीं लिया, बेअसूल बन गए, नीयत बिगड़ गई और ज़िम्मेदारी का एहसास ख़त्म। नतीजा क्या होगा? कल जब सबक सुनाने के लिए बात की जाएगी तो सबक सुनाना मुश्किल होगा, ग्रुपिंग के लिए कॉल आएगी तो आप अवॉइड करेंगे, टेस्ट आएगा तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, और बाज़ दफ़ा आप ये सोचने लगेंगे कि अब मुझे टेस्ट के डर से पढ़ना ही नहीं है, मैं लिसनर ही ठीक हूँ। नतीजा क्या हुआ? आपने अपने आप को ज़ाया कर दिया। कितना कीमती वक्त था जो आप दे भी रहे हैं लेकिन आपने इसका पूरा नहीं लिया। तो लिहाजा एहसास ज़िम्मेदारी इंसान की ज़िंदगी में कामयाबियाँ लाता है। आज एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, कल इंशाल्लाह आप एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनेंगे। आज एक अच्छे टीचर हैं, कल इंशाल्लाह आप बड़े मैनेजमेंट में बड़े काम करने में ज़िम्मेदारियाँ लेंगे। तो हर बंदा अपनी ज़ात से जितना लेना चाहे ले ले। अल्लाह ने मौके हर एक को दिए, बराबर के दिए, कोई नहीं लेता उसकी मर्ज़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सारे ख़जाने दे के भेजा। पाँचवीं चीज़ जो किसी इंसान की ज़िंदगी में क्रिएटिविटी ला सकती है वो क्या है? शुजात, ब्रेवरी। इंसान इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ज़रूरत और हाजत के वक्त मुसीबतों खतरात का साबित कदमी से मुकाबला कर सके, इसको शुजात कहते हैं। हमारे यहाँ बहादुरी क्या है कि किसी मैदान में किसी को पछाड़ देना, कुश्ती हुई और आप उसमें जीत गए, दूसरे को जेर कर दिया, या हम सोचते हैं शुजात से कि मैदान जंग में जाके तलवारें उठाना, ये अपनी बात है, ये हर मैदान की शुजात फ़र्क है। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी की शुजात क्या है कि अपने मुश्किल हालात में, एडवर्स कंडीशन में जमा रहे मकसद पे। और मैं देखती हूँ कि दीन के रास्ते में चलने वालों को इस शुजात की तो बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जो ही हल्की सी आंधी चलती है ना ज़िंदगी में, खुशियों वाली या गम वाली, तो सबसे पहले हम अपने उस मकसद ज़िंदगी को गिरा देते हैं जो हमने बनाया होता है, और वो क्या था? इल्म का हसूल। कुछ लोग बुरे नताइज पर हमेशा नज़र रखते हैं, नताइज पर निगाह रखते हैं और खौफ ज़दा होने लगते हैं कि होगा क्या कल, कल मेरे मामले में क्या होगा। नहीं, जो शख्स नताइज पर निगाह रखे और उसके पेश आने से खौफ ज़दा हो, मगर जब वो सामने आ जाए तो साबित कदमी से उनका मुकाबला करे, यही है मर्द बहादुर, यही है शुजात वाला। और जो कोई शख्स मौका और महल की मुनासबत से बेहतरीन काम करने वाला साबित हो, उसको आप शुजा कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर ख़तरे में कूद पड़े ये सोच के क्या बहादुर बहुत है, हाँ, बल्कि बहादुर इस हालत में भी हैं आप कि नतीजे पर निगाह रखने के बाद ये फैसला करें कि इस मौके पर ख़तरे से बचना बेहतर है या ख़तरे से लड़ना बेहतर है। ख़ुद को बचाना भी कभी कभी बहादुरी होती है, जिस तरह लड़ना बहादुरी होती है। हकीकत यह है कि सबसे बड़ी बहादुरी मुसीबत और सख्ती के वक्त दिल का इत्मीनान और अपने हवास को हाजिर रखना है। बहादुर वो है जब उस पर कोई सख्त वक्त आए तो अपने इत्मीनान और बेदारी ये हवास को ना खोए, काबिलियत रहे, दिल साबित कदम साबित रहे, इसका मुकाबला करे, अपनी अकल को इस्तेमाल करे, मुतमईन रहे। तो आपने अपने से फ़ायदा उठाना है तो ये खूबी अपने अंदर घोल के डाल लीजिए कि मैंने वो पत्ता नहीं बनना जो पहली ही आंधी में दरख्त से झड़ जाए, कभी वापस नहीं जुड़ेगा। आप एल्फी से जोड़ें, आप गम से जोड़ें, आप ग्लू से जोड़ें, ये पत्ता दोबारा नहीं जुड़ेगा, किसी और जगह लग जाएगा, कुछ और इससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये पत्ता जो है दोबारा नहीं लगेगा। एक दफ़ा जो झड़ जाता है ना, फिर अल्लाह ही उसको वापस जोड़े तो वो जुड़ेगा, वरना अमूमन फिर इंसान जुड़ नहीं पाता। अगली चीज़ भी देखते हैं, छठी चीज़ है जो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाती है, और वो क्या है? हया, मॉडेस्टी। आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो मॉडेस्टी ये है कि सर से पांव तक छुपा लो और अपने चेहरे को छुपाओ कि ना हाथ को छुपाओ, हमने सारी चीज़ों को ज़ाहिर पे कयास किया। हकीकत क्या है कि हया किस चीज़ का नाम है? कि इंसान खैर की तरफ कदम बढ़ाए और शर से बचने की सलाहियत हासिल कर ले। अल्लाह ने हर इंसान को ये कुव्वत और ताकत दी है, और इसी कुव्वत का दूसरा नाम हया है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था, हया ईमान की एक शाख है। हया खैर के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं देती, हया ईमान है, और ईमान बंदे को नेकियां करने की तरफ माइल करता है, और हया से खैर आती है। अल्लामा मावर्दी हैं, कहते हैं, खैर और शर पोशीदा मानी है जो सिर्फ़ अपनी इन अलामतों के ज़रिए से ही पहचाने जाते हैं, जो इन मानी पर दलालत करते हैं। बस खैर की बेहतरीन अलामत हया और शर्म है, और शर की अलामत बेहयाई है। क्या पता चला? असल चीज़ फिर खैर और शर क्या है कि बंदे में हया कितनी है और कितनी नहीं। हया है ना तो अब खैर पे हैं, और अगर शर है ना तो खुदा न खास्ता फिर देखना होगा कि बेहयाई पे तो नहीं। अरबी का एक बहुत प्यारा शेर है, उसका तर्जुमा आपके सामने रखूँगी। इंसान से इसके अखलाक के मुतालिक ना पूछो, खुद इसके चेहरे मोहरे में इसके अखलाक की शहादत मौजूद है। सच है, इंसान तो अपने एटिकेट से, अपने चेहरों से, अपनी हरकतों से बताता है कि उसका अखलाक क्या है। ये कोई लिख के दी जाने वाली चीज़ नहीं है। बाज़ लोग अपने आप को किसी और तरह इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जब आपसे अमली तौर पे वास्ता पड़ता है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। हमने ऐसा नहीं बनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली किताबों की जो तालीमात थी उसमें एक बात थी, क्या कि औलाद आदम जब तुझ में हया न रहे तो जो तेरा जी चाहे वो कर। फ़ैज़ लम तस्तही फ़स्नमा शिता। آپ دیکھیں کتنی گہری بات ہے. حیا بندے کو روکتی ہے گناہوں کی طرف بڑھنے سے, حیا بندے کو روکتی ہے غلط کام کرنے سے. حیا تین طرح سے کی جاتی ہے. سب سے پہلی حیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, پھر دوسرے درجے پہ لوگوں سے حیا کی جاتی ہے, اور تیسرے درجے پہ پھر حیا کی جاتی ہے اپنے نفس سے, آپ کی اپنے نفس سے حیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو اس درجے پر جو حیا کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ حیا کا حق کس طرح ادا کریں؟ سوال کتنا خوبصورت ہے, عمل کے لیے پوچھتے تھے نا. اچھا ہماری طرح نہیں, سمجھ آیا کہ نہیں آیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں کیسے کریں, اللہ سے کیسے حیا کریں؟ تو جواب بڑا خوبصورت ہے, ہائی لائٹ کر کے لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا سر اور جو اس میں محفوظ ہے, یعنی عقل دماغ, اور پیٹ اور جو اس میں محفوظ ہے, ان کی حفاظت کے ذریعے حیات دنیا کی زینت کے ترک اور موت اور بدن کے گل سڑ جانے کی یاد کے ذریعے سے حیا کا صحیح حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا ہوتا ہے. کیسے؟ سر کے اندر کیا ہے؟ عقل, عقل دماغ, یعنی بری باتیں سوچو بھی نہ. اللہ تعالیٰ سے حیا کیسے, اپنے لفظوں میں آپ لکھیں گے, اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق کیا ہے کہ غلط باتوں کو دماغ میں آنے ہی نہ دو. کیونکہ آپ دیکھیے دوسروں کو تو ہمارے کام تب پتہ چلتے ہیں نا جب ہم وہ کر لیتے ہیں, اللہ کو تو اس وقت بھی پتہ چل جاتے ہیں جس وقت ہم نے وہ ابھی سوچے ہوتے ہیں. اور سوچ ہی عمل کا تقاضا کرتی ہے, بری سوچ برے عمل کو جنم لیتی ہے, اچھی سوچ اچھے عمل کو جنم دیتی ہے. تو لہٰذا بیڈ تھنکنگ نہیں. اب بتائیے کہ بیڈ تھنکنگ سے بچنے کے لیے پھر ہم اپنے آپ کو روکیں گے نا غلط چیزوں کے دیکھنے سے, سوچنے سے, خود بخود آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی جائے گی. اچھا او یہ غلط چیز دیکھ رہی ہوں, او نو نو مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے, مجھے حیا آ رہی ہے. چلیے آپ دیکھیے آپ کا کتنا بیکار وقت بچ گیا جو گوسپ میں جاتا تھا, جو ولگر چیزوں کو دیکھنے یا سوچنے میں جاتا تھا آپ نے پاک کر لیا. اگلے درجے پہ دیکھیے پیٹ اور جو اس میں محفوظ ہے وہ کیا ہے, کھانا, اس کی حفاظت کرو, یعنی پیٹ کو حرام کے لقموں سے بچاؤ, ناجائز چیزوں سے بچاؤ, کسی کی حق تلفی نہ کرو. آپ ذرا سوچیں اللہ کو پتہ ہے میرے پیٹ میں یہ کیا گیا ہے, صحیح گیا ہے کہ غلط گیا ہے. زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی نا. پھر آپ دیکھیے یہاں تک آتا ہے, لیکن کچھ اور چیزیں جس کو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی زینت کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرو, ترک کر دو. کیونکہ دنیا کی زینت کو جب بندہ بناتا ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ ضروری اللہ کے ساتھ حیا میں کمی آتی ہے. اپنے بدن کے ساتھ آپ دیکھیے جب انسان لوگوں سے حیا کیسے کرتا ہے, اگر اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ لوگوں کے سامنے ایسے کسی حال اور حلیے میں نہ آنا کہ جس سے ان کے دل میں شہوت آ جائے. بعض دفعہ ہم اپنے حلیے کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں میرا دل بڑا صاف ہے, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, میں کچھ بھی پہنوں میری فیلنگ نہیں چینج ہوتی, پھر بھی میں نماز کے وقت میں نماز پڑھتی ہوں. مان لیتے ہیں آپ کی بات. آپ یہ تو بتائیے آپ کے حلیے کو دیکھ کے کتنوں کا دل بدلا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ جب میں بہت بن ٹھن کے بہت اپنے آپ کو نمایاں کر کے نکلتی ہوں دعوتوں میں, کتنوں کی نظروں کو گناہگار کرتی ہوں گی, کتنوں کے دلوں میں غلط خیال آتا ہوگا, اور کتنے اس کا اظہار پھر کتنی غلط جگہوں پہ جا کے کرتے ہوں گے. دیکھیے ایک ولگر مووی دیکھ کے کوئی ثواب کی نیت سے تو نہیں اٹھتا ہوگا کہ چلو میں تہجد پڑھ لوں, تو آپ نے دوسروں کو بھی بے حیا کر دیا نا. اور اسی طرح اپنی ذات سے حیا کیا ہے, بدن اور موت کے گل سڑنے کی یاد کو قائم رکھو, خود سے بھی حیا کرو, اکیلے میں بھی غلط باتیں نہ سوچو. انشاءاللہ اس سے بھی ہماری زندگی میں ایک استقامت آئے گی اور ایک استقلال آئے گا. انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں, اگلے پوائنٹ بھی بہت خوبصورت ہیں. آپ کے لیے یہ موقع کی بات ہے کہ آپ ان 6 باتوں کو اگلی نشست تک سوچتے رہیے. اگلی نشست جو ہماری ہوگی اس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے. آپ کا کام کیا ہے اگر واقعی آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں, آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اب انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو وقت دینا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے. اللہ نے چاہا زندگی رہیت پہ ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.